मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम्। चौबीस तीर्थंकर महापुराण में आदिनाथ भगवान की कहानी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखो क्या क्या देखा, तीर्थंकर ऋषभदेव की स्टोरी है। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जीव जो कि कई भवों में घूमता हुआ बाद में महाबल राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। उनके चार मंत्रियों में से एक मंत्री ने उनको धार्मिक उपदेश दिया और उनकी थोड़ी सी धर्म की रुचि वहाँ से जगना प्रारंभ हुई। वहाँ से धर्म रुचि जब उनके अंतर में जागी तो मरण के बाद वे ललितांग देव हुए। ललितांग देव के भव के बाद उनका जन्म वज्रसंग के रूप में हुआ, राजा वज्रजंग और उनकी रानी श्रीमती। राजा वज्रजंग और श्रीमती का भव चल रहा था कि श्रीमती और राजा वज्रजंग ने दो मुनिवरों को आहार दान दिया। आहार दान दोनों को जाति स्मरण हुआ, मुनियों ने उनको धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर के बाद और आहार दान के बाद उनके भव्य जीवों के ऐसे संस्कार पले कि आहार दान के भाव से वे जीव भोग भूमि में उत्पन्न हुए। और भोग भूमि में जब वे उत्पन्न हो चुके और साथ में आहार दान देखने वाले जो चार पशु थे वहाँ पर शेर, नेवला, शुकर और सर्प, ये चारों पशुओं ने भी वहाँ आहार दान की अनुमोदना की और सभी जीव भोग भूमि में उत्पन्न हुए। ये छह जीव वहाँ भोग भूमि में थे। जब ये छह जीव वहाँ भोग भूमि में थे तब दो मुनिराज वहाँ आकाश मार्ग से उतरे। इन दो मुनिराजों में एक जीव वही था जिसने महाबल राजा को धर्मोपदेश दिया था। यहाँ वे दो महाबल राजा, उनकी रानी रानी जो थी, वो सब जिनका जो वज्रजंग का जीव था, ऋषभदेव का जीव कह सकते हैं, वे सभी अब यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले थे। ये भोग भूमि का भाव हमारा अभी चल रहा है। देखो मुनिराज क्या कहते हैं, हे आर्य, हम दोनों ने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से देखा कि तुम यहाँ भोग भूमि में उत्पन्न हुए हो। पूर्व भव में तुम हमारे परम मित्र थे, इसलिए तुम्हें प्रतिबोधन हेतु हम यहाँ आए हैं। श्री मुनिराज परम करुणा से कहते हैं, हे भव्य, तुम पवित्र सम्यक दर्शन के बिना मात्र पात्र दान के प्रभाव से यहाँ उत्पन्न हुए हो। यह बात निश्चय से समझ लो, महाबल के भव में तुमने मुझसे तत्वज्ञान प्राप्त किया था, परंतु उस समय भोगों की आकांक्षा के वश तुम दर्शन विशुद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। अब सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्ग मोक्ष के सुख का मुख्य साधन ऐसा सम्यक दर्शन देने की इच्छा से हम यहाँ आए हैं। इसलिए हे आर्य, आज ही तुम सम्यक दर्शन ग्रहण करो। अहो मुनिराज के श्री मुख से परम अनुग्रह भरे ऐसे वचन सुनकर वज्रजंग की आत्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। वे दोनों मुनिराज यहाँ वज्रजंग को धार्मिक उपदेश देने के लिए आए थे, सम्यक दर्शन कराने के भाव से आए थे। देखो धर्म की रुचि होना अलग बात है और धर्म का प्रारंभ होना अलग बात है। सच तो यह है कि हम चाहे कितना ही मंदिर में आकर के पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें, लेकिन अभी तक हमारा धर्म का मार्ग प्रारंभ भी नहीं हुआ। हम लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझने लगते हैं अभी, मंदिर आकर के पूजन पाठ करके स्वाध्याय करके थोड़ा बहुत, अब ऐसा लगता है बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हो गए, अब तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो मुनिराज कहते हैं कि अभी तो धर्म प्रारंभ भी नहीं हुआ। धर्म की रुचि लगना कोई बड़ी बात नहीं है। शुभ और अशुभ दो भाव तो मिथ्या दृष्टि जीव के होते ही हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। धर्म की रुचि मतलब शुभ भाव, ये दो भाव तो मिथ्या दृष्टि जीव के होते ही हैं अज्ञानी के, उसमें क्या आश्चर्य है। ये तो किसी को भी हो सकता है। बात तो तब है जब धर्म का मार्ग प्रारंभ हो, और वो प्रारंभता कहाँ से आती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता ना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, कि मोक्ष महल की सम्यक सीढ़ी जो है प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यकता को नहीं लेते। सम्यक्ता ना लहे सुदर्शन मतलब ज्ञान और चारित्र भी सम्यकता नहीं लेते, किसके बिना, दर्शन के बिना। इसलिए दर्शन धारो, पहले पहले सम्यक दर्शन करो, वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। ये बहुत भाव से आचार्य देव कह रहे हैं उन दो मुनिराजों, दो मुनिराजों के मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए होंगे। जैसे पूर्व का अनुराग था कि ये तीर्थंकर का जीव है, उन्हें पता चला ये तीर्थंकर का जीव है, तो ऐसे जीव को संबोधने का भाव आए बिना नहीं रहता। वीतरागी दिगंबर मुनिराज भोग भूमि में वहां जीवों को उपदेश देने के लिए गए थे, सम्यक दर्शन कराने के भाव से। हम ये ना समझे कि वो महा उसको राजा वज्रजंग के जीव को ही सम्यक दर्शन कराने गए। हमें तो ये समझना है कि आज हमारा सम्यक दर्शन करने का दिन है। बहुत भाग्य से, बहुत पुण्य के उदय से हमें जिनवाणी सुनने को मिलती है वास्तव में। और सोचो, अपन सोचो, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कितने लोग जिनवाणी सुनते हैं वर्तमान में, कितने सारे लोगों में कितने लोग जिनवाणी सुनते हैं। जैन कुल में उत्पन्न हुए जीव, जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद देवशास गुरु के सम्मान का भाव आना, सच्चे देवशास गुरु की यथार्थ पूजा करना, उनके गुणों का अनुवाद करना और साथ में उनके जैसा बनने की भावना भाना, ये वर्तमान में गिने चुने लोग ऐसा कर पाते हैं, गिने चुने लोग। मुझे तो ऐसे जीव भी मिले जो कहते हैं कि जब होना होगा तब हो जाएगा, अभी क्यों करें, जब होना होगा तब हो जाएगा, अभी क्यों करें। हम कह रहे हैं ना भैया स्वाध्याय करो तो हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, तो लगता है कि जब होना होगा हो जाएगा, अभी से क्यों करना। कहने का मतलब ये कि देखो, गलतियां करते जाएं और फिर कहें कि होना होगा जब हो जाएगा, तो ये मूर्खता होती है। हम वो तो रहे संतरे के बीज, और हमें लगता है कि एक महीने के बाद इसमें से आम उगेंगे, तो गलती किसकी है, हमारी। ऐसे क्या है, वर्तमान में लोग भगवान को कर्ता भी मानते हैं, कर्ता मान के पूज रहे हैं भगवान को, और फिर कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, जब होना होगा हो जाएगा। तो ऐसे जब होना होगा तब नहीं होगा, गलतियां सुधारो, निर्णय करना सीखो। निर्णय करना ही पहला पुरुषार्थ है हमारा। पहला पुरुषार्थ क्या है, निर्णय करना। जितनी भी शंका उत्पन्न हो रही है ना, जितनी भी शंका है, जितनी टेंशन है कि भैया एक व्यक्ति ये कह रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहा है, किसकी माने किसकी माने किसकी माने, कि किसी की मत मानो। तुमने तीनों की बात सुनी ना, अब विचार करो ना, खुद विचार करो ना, खुद की बात मानो, निर्णय करो। अपने तीर्थंकरों ने तक, सर्वज्ञ परमात्मा ने तक ये बातें कही है। क्या कहा है कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मैं कह रहा हूं इसलिए मानोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आचार्य कुनकुन देव ने पांचवी गाथा में लिखा कि जदि दाहेच प्रमाणम, के अपने अनुभव से स्वीकार करना, किससे स्वीकार करना, अपने अनुभव से प्रमाण करना। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मैंने ये बातें ऐसे ही नहीं मानी, मैंने जो तीर्थंकर महावीर सीमंदर स्वामी अपने गुरुओं से जो कुछ भी सीखा उसका स्वयं चिंतन किया, चिंतन किया, मनन किया, उसका अनुभव किया। अनुभव के बाद में मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस अनुभव में कितना आनंद है, और मैं कह रहा हूं अनुभव में आनंद है इसलिए तुम मत मानो, अनुभव करो तो पता चलेगा। और वास्तव में सच भी है। आप कितना ही स्वाध्याय करो, कभी आपको अतींद्रिय आनंद की बात समझ में नहीं आएगी, आएगी आई नहीं सकती। सिद्धों का जो आनंद है वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितना ही स्वाध्याय करो, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि क्यों भैया ऐसा क्यों। मुनिराज समझाए तो भी समझ में नहीं आएगा, स्वाध्याय करे तो भी समझ में नहीं आएगा कि नहीं आएगा क्यों। कि देखो एक छोटा सा बच्चा है, कौन है छोटा सा बच्चा, 2 साल का 3 साल का, घर पे मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जानते ना, जब लाइट चल जाती है मोमबत्ती जलाते हैं, मुंबई में तो लाइट जाती नहीं है तो मोमबत्ती जल रही है। अब वो बच्चा बार बार उस आग को पकड़ने के लिए जाता है कि नहीं जाता, उस आग को हाथ लगाने जाता है। दीपक चल रहा हो, मोमबत्ती चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, तो वो छोटा सा बच्चा बार बार उसकी तरफ भागता है और हम उसे रोकते हैं। अब उसको कितना समझाएं कि वो जल जाएगा वो मान जाए, बताओ कितना समझाया जाए कि वो जल जाएगा और वो मान जाए, वो मानने वाला नहीं है। ऐसे ही अब तो फिर समझाने के लिए क्या करना, एक बार उसे जाने दो, जाने दो एक बार, जब हाथ लगा लेगा ना अग्नि को फिर द्वारा आप द्वारा आप भेजोगे तो नहीं जाएगा, है ना। उसे अनुभव हो गया उस बात का, समझ में आ गई बात, ऐसे अनुभव से समझ में आता है। ऐसे आचार्य देव हमें कितने ही समझाएं कि इधर सुखे इधर सुखे इधर सुखे, जिनवाणी में कितना ही स्वाध्याय करके पढ़ लो, पढ़ के चले गए, 1 घंटा टाइम पूरा हो गया, चलो हो गया काम, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनुभव से ही समझ में आएगा, कहने का मतलब ये है। इसलिए दोनों मुनिराज को राजा वज्रजंग को बोल रहे थे कि सम्यक दर्शन ग्रहण करो, ऐसे कोई धार्मिक रुचि से कुछ होने वाला नहीं है। तुम आरदान के प्रभाव से भोग भूमि में तो उत्पन्न हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हारे धर्म का प्रारंभ हुआ नहीं है। धर्म का प्रारंभ ऐसे होगा, कहां से होगा कि सबसे पहले आपको सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। देखो क्या उपदेश देते हैं, प्रीतिकर मुनिराज परम अनुग्रह पूर्वक वज्रजंग की आत्मा को सम्यक दर्शन अंगीकार कराते हुए कहते हैं कि हे आर्य, तुम इसी क्षण सम्यक दर्शन ग्रहण करो, अभी की अभी, तुम्हारे लिए सम्यक के लाभ का काल है। तद ग्रहणाद्य सम्यक्त्वं तल लावे काल एष्टे, कि अभी तद इसी समय उसी समय सम्यक्त्वं सम्यक्त को तत् लाभे उसके लाभ के लिए काल एष्टे, यही काल है, इस सम्यक दर्शन का यही काल है, इसे आप अभी की अभी ग्रहण करो। देशना लब्धि आदि बहिरंग कारण और करण लब्धि अंतरंग कारण द्वारा भव्य जीव दर्शन विशुद्धि प्राप्त करते हैं। सर्वज्ञ कथित जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। निशंकता आदि 8 अंग रूपी किरणों से सम्यक दर्शन रूपी रत्न अत्यंत सुशोभित होता है। सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं उन्होंने, देखो देशना लब्धि आदि बहिरंग कारण और करण लब्धि रूप अंतरंग कारण। लब्धि कितनी होती है, लब्धि कितनी होती है, 5 लब्धि होती है, 5 लब्धि कौन कौन सी, देशना विशुद्धि क्षयोपशम प्रायोग्य करण, देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि क्षयोपशम लब्धि प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां होती हैं टोटल। और ये 5 लब्धि जिनको 5ों लब्धि होती हैं उसे ही सम्यक दर्शन होता है। लब्धि लब्धि मतलब समझते हैं, लब्धि लब्धि शब्द का अर्थ होता है लब्धि, लब शब्द से बना है, लब धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना, लभते मतलब प्राप्त किया, लभते प्राप्त करने योग्य, तो लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्त करने से होता है। जिसे जितनी लब्धियां प्राप्त हो गई, लब्धि देशना विशुद्धि क्षयोपशम प्रायोगिकरण, जिस जीव को करण लब्धि होती है लास्ट लब्धि, वो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता रखता है। करण लब्धि वाला जीव जो होता है वो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता रखता है। अब यहाँ सम्यक दर्शन का उपदेश वो दोनों आचार्य दे रहे हैं। देखो 8ों अंग के विषय में बात कर रहे हैं, 8ों अंग के विषय में, तुम इस श्रेष्ठ जिनमार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़। पहला निशंकित अंग होता है, निशंकित अंग 8 लाइन इन्होंने लिखी है बहुत शॉर्ट में, इन 8 लाइनों के माध्यम से मैं आपको 8 अंग पढ़ा देता हूँ सम्यक दर्शन के, है ना। तुम इस श्रेष्ठ जिनमार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो। सबसे पहली शंका हमारी क्या है जीवन में, हमारा जीवन अभी शंकामय है, शंका में बहुत परेशान हैं, क्या करें और क्या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें, इसी सवालों में हम उलझे हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह उलझे हुए हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तुम पहले इस श्रेष्ठ जिन मार्ग को जानो जानो, उसके बाद मार्ग संबंधी तुम्हारी जितनी भी शंकाएं हैं ना, ये करें या ये करें या ये करें, उसके बाद छोड़ो। आज तो पता है एक होड़ लगी होती है, होड़ धर्म के विषय में होड़, ये अगर इतना कर रहे हैं तो हम इतना करेंगे, ये अगर इतना कर रहे हैं तो हम इतना करेंगे। दूसरा अभी मुमुक्षु चल रहा है ना, मुमुक्षु मुनिपन, तो अगर ये हमारे प्रोग्राम में नहीं आते तो हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। ये बड़ा एक डेंजर विषय है, तुम्हें प्रोग्राम उनको दिखाने के लिए अटेंड करना है कि अपनी भावों की विशुद्धि के लिए अटेंड करना है, ये तो सोचो। मेरे से तो ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि देखो तुम सोनगढ़ी हमारे कार्यक्रम में नहीं आते तो हम तुम्हारे कार्यक्रम में क्यों जाएं। अच्छा तुम तो अपने मंदिर अलग बना के बैठे हो तो तुम हमारे मंदिरों में झांकते तक नहीं हो तो हम तुम्हारे मंदिरों में क्यों जाएं। अब पहले तो ये सोचो कि मंदिर किसका, तीन लोग के ना जहां विराजे हुए हैं उसको किसी और का मंदिर कहना बहुत बड़ी गलती है हमारी। यहाँ पंच कल्याणक कराए, लाखों रुपया खर्च करके पंच कल्याणक कराए, करोड़ों रुपया खर्च करके पंच कल्याणक कराए हैं। पंच कल्याणक कैसे होते हैं देखते ना अपन शास्त्रों में, जैसा जैसा तीर्थंकर का वर्णन होता है वैसा वैसा यहाँ पंच कल्याणक में हम उस विधि को दोहराते हैं। इतना सब कुछ करते हैं किस लिए, अपना घर बनाने के लिए, तीन लोग के देव का घर बनाने के लिए, और हम उसे अपना बना देते हैं कि भैया कमेटी का मंदिर है या अध्यक्ष का मंदिर है। मंदिर किसी का नहीं है, मंदिर किसी का नहीं है। आपका जब भाव हो मंदिर आओ, दर्शन करो, स्वाध्याय करो, पूजन करो, लाभ लो, तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है उसका क्या? अरे वो नहीं आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। ये मार्ग संबंधी शंका है, ये मार्ग संबंधी शंका है जो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। वो शंकाएं तो हमारी चलो दूर हो जाती है बहुत सारी, तो कि भैया कुदेवों को नहीं पूजना, कुशास्त्र को नहीं पूजना, कुगुरु को नहीं पूजना, अभी तो ये शंकाएं भी दूर नहीं हुई है। क्या अभी तो इन शंकाओं में भी बहुत कुछ बाकी रह गया है हमारा। जब कोई मर जाता है या कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में कैसे निकल जाता है मुंह से, भगवान करे सब ठीक हो जाए, निकलता है कि नहीं निकलता? हाँ तो ये गलती है, स्वाध्याय के बाद ऐसा नहीं निकलना चाहिए, गलती से भी नहीं निकलना चाहिए। मुझे 6 साल हो गए, मेरे मुंह से तो आज तक नहीं निकला कभी, जब से जिनवाणी पढ़ी है तब से ये बातें तो मेरे मुंह से कभी निकल ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कैसे कह देते हैं, अच्छे अच्छे स्वाध्याय विद्वान लोग भी कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं, कोई खत्म जा रहे भगवान करेगा तो सब बढ़िया होगा, मैं कहता हूँ भैया भगवान करेगा मतलब, अरे तुम व्यवहार नहीं समझते, व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, क्या बात कर रहे हो, ये व्यवहार नहीं मिथ्यात्व है, ये तो समझो ये व्यवहार नहीं मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, आपने भगवान को कर्ता मान लिया ऐसा कह करके। यही अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान है कि उसे अंदर से इतना दृढ़ श्रद्धान होता है, इतना दृढ़ श्रद्धान होता है जैन दर्शन पे, 7 तत्वों पे, कि उसे बाहर कहीं और दूसरे मार्ग में आप जाते हुए देखोगे ही नहीं, उस दूसरे मार्ग की प्रशंसा तक नहीं करते देखोगे, जरा सी प्रशंसा नहीं कि यहाँ तो इतना तो कम से कम अच्छा होता होगा, ऐसी प्रशंसा भी सम्यक दृष्टि अगर कर दे तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। श्वेतांबर मत की प्रशंसा भी करे तो मिथ्या दृष्टि, थोड़ी सी प्रशंसा भी करे तो मिथ्या दृष्टि, समझ में आया। वीतरागी धर्म वीतराग धर्म, यहाँ होड़ नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि भैया मुसलमान लोग हमारे भगवान को नमस्कार करे तो हम भी आज नमाज पढ़ने लग जाए जा करके, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ किनको देखने से अनुमोदना नहीं, देख करके उसको अच्छा मानने से अनुमोदना है।
अच्छा,
जगह देने से तो अनुमोदना है, हाँ देखो आप श्वेतांबर मत की समालोचना पढ़ने तो रत्नकरण शावकाचार्य में पंडित सदासुखदास जी ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, श्वेतांबर मत की समालोचना, फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से, रत्नकर्ण शाकाचार में पूरा, रत्नकर्ण शाकाचार वो जो लाल कलर वाला है ना, वो जो वहां से छपा है अजमेर से छपा हुआ ग्रंथ है, पांचवे छठवे श्लोक के बाद, नहीं सदाशिवदास जी की टीका है उसमें, पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल की टीका है, छठवे श्लोक के बाद उसमें वर्णन में श्वेतांबर मत की समालोचना दी है, 4-5 पेज में काफी कुछ लिखा हुआ है उन्होंने वहां की मान्यताओं के विषय में, उसमें पढ़ना चाहिए। और मैं तो अभी एक बुक और लेके आया घर से पढ़ने के लिए, धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा में अन्य सभी मतों की समालोचना है, वो पता है किसने लिखी है धर्म परीक्षा? आचार्य अमित गति देव, जिन्होंने भावना 32 लिखी है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से भावना 32, उन्होंने संस्कृत में लिखा था ये, भावना 32 भी संस्कृत में है और ये धर्म परीक्षा भी पूरी संस्कृत में है। स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है अच्छी, जिसमें अन्य मतों की सारी बातें आई हैं और उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है, भावना 32 का हिंदी अनुवाद युगल जी ने किया, धर्म परीक्षा का हिंदी अनुवाद भी है, तो वो अपन पढ़ें, बहुत पढ़ने लायक किताब है। हाँ बहुत पढ़ने लायक किताब है, स्टोरी है, स्टोरी है हिंदी में, एक मनोवेग और वायुवेग नाम के दो व्यक्ति हैं, तो उनकी स्टोरी है पूरी, उसमें अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग तरह की मिथ्या मान्यताएं, उनका खंडन बहुत, मतलब एक तरह से व्यंग्य रूप में भी देख सकते हो आप उसको, दूसरे मतों पर व्यंग्य, तो पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। हमने जब पढ़ा था हॉस्टल में एक बार, अभी दोबारा मैंने पढ़ना उसको शुरू किया है ताकि अच्छे से याद हो जाए मुझे वो, तो पढ़ने लायक है। तो सच तो यह है कि अभी तक हमारी शंकाएं दूर नहीं हुई है, वो दूर करना है। पहला, तुम इस श्रेष्ठ मार्ग जिन मार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो। हमारे यहाँ तो आचार्य एक बात और कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अभी दूसरी जगह विचार जा रहा है ना, थोड़ा सा भी, तो हुआ आओ, पहले कोई टेंशन नहीं है, रोक नहीं रहे हम आपको, जाके आओ, सब मंदिरों में जाकर आओ, बाहर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो जो आपको दिखता है सब होके आओ, वहां रह करके आओ 2-4 दिन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लगे ना कि यहाँ मतलब नहीं निकल रहा है तो आना, जब आपको लगे कि यहाँ कोई फायदा नहीं है तब आना हमारे पास, तो आपको समझ में आएगी बात। सब मंदिरों में जाओगे वही हिंसा के परिणाम, क्रूर भाव देखो आप कहीं भी, कहीं शराब बढ़ती है प्रसाद में तो कहीं मांस बढ़ता है प्रसाद में, और हालांकि हिंदुओं में तो प्याज भी नहीं चढ़ाते भगवान को, लेकिन हथियार दिखते हैं चारों तरफ उनके देवी देवताओं के। आप सोचो अगर ऐसे देवी देवता किसी के सामने आ गए, खड़े हो गए, तो उधर डर के भाग जाएगा, जिस तरह के उनकी प्रतिमाएं होती हैं देवी देवताओं की, उस तरह के अगर वास्तव में सामने आ जाए कोई 8 हाथ वाले और हाथ में चक्कू और ये तलवार लिए हुए, तो देख के भाग जाएगा डर के मारे, तो ये रूप नहीं जमता है। भगवान तो वो जिन्हें कोई टेंशन नहीं हो, आकुलता व्याकुलता से रहित। दुख का कारण पता है, दुख का कारण क्या है? पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, क्या लिखा दुख का कारण? आकुलता, तीसरी ढाल का पहला चरण, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्म का हित सुख है, लेकिन वो सुख कहां पे? आकुलता के बिना, निराकुल स्वभाव, वहां सुख लो, सुख वहां है। हमें इस जिन मार्ग को जानना है, अच्छे से समझना है, जैन शासन को अच्छे से समझना है, थोड़ी सी भी शंका नहीं रखना, थोड़ी सी भी शंका नहीं रखना। बार बार मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्वाध्याय करने के बाद सब भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं है, पकड़ के बैठना है। आपको पता है, मुझे तो कई लोग कहते हैं कि संभव तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अपन संस्था में ट्रस्ट में काम करें या फिर अपन सिर्फ जिनवाणी पढ़ाए या इसी मार्ग में आगे बढ़े, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि संस्था और ट्रस्ट की नौकरी नहीं करके हमें ना अलग से नौकरी करना चाहिए, स्कूलों में या ऐसी जगह या वैसी जगह, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो मैं तो बहुत सोचता हूँ कि भैया पुलिस की ट्रेनिंग लेने के बाद कोई दुकान थोड़ी खोलता है। हाँ आपको पता है एक ईमानदार पुलिस वाला किसे कहते हैं? ईमानदार इंस्पेक्टर। मूवीज में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? सिंघम हुआ, सलमान खान दबंग, तो जो भी दिखाते हैं, एक ईमानदार इंस्पेक्टर किसे कहते हैं? जो ईमानदारी से अपना कार्य अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के करे, उस वो रूल्स फॉलो नहीं करते, वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलते, रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन अपने दिमाग से नए रूल बना करके कार्य करते हैं और कार्य सफल करते हैं। कोई गलत काम नहीं करते और कार्य सफल करते हैं, ऐसे वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं। मिलिट्री में कैसे ईमानदार मिलिट्री वाले, जब ये लोग डिग्री लेते हैं अपनी, जब इन्हें जॉब मिलती है तो ये लोग शपथ लेते हैं कि हम घर और परिवार से पहले फर्ज को अंजाम देंगे। उनके लिए फर्ज बड़ा होता है। एक डॉक्टर, सच्चा डॉक्टर किसे कहते हैं? सच्चा डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर सब तरह के होते हैं, पुलिस वाले भी सब तरह के होते हैं, मिलिट्री वाले भी सब तरह के हो सकते हैं। एक पुलिस वाला जो दिन रात रिश्वत खा करके अपने घर से अपने मजे कर रहा है खूब अच्छे बड़े बड़े फ्लैट में, दूसरा छोटे से घर में रहकर परिवार को बाद में देखता है लेकिन देश को पहले देखता है। एक डॉक्टर ऐसा ही होता है। कुछ डॉक्टर पैसा कमा करके गरीबों से भी लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सबका मुफ्त इलाज भी करने को तैयार होते हैं, रात को 12 बजे भी आवाज लगाओ तो दौड़कर चले आते हैं। ऐसे ही शास्त्रीय विद्वान भी कई तरह के हो सकते हैं, ऐसे ही स्वाध्याय लोग भी कई तरह के हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं जिनको रात को 12 बजे भी कहो और जिनवाणी में से कुछ पूछा जाए तो तुरंत बताने को तैयार हो जाए, और एक ऐसे लोग भी होते हैं जो दिन रात एक ही बात कहें, भैया हमें अपना कैरियर बनाना है कैरियर बनाना है और पैसा इकट्ठा करना है, घर परिवार भी तो देखना है कि नहीं देखना, घर परिवार देखना। तो 5 साल जिनवाणी में तुमने पढ़ा क्या, पढ़ा क्या? सच कह रहा हूँ, बहुत सच कह रहा हूँ। अगर आपको अभी भी ऐसी भावना थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना घर परिवार नहीं देख रहा या मैं घर पे बिल्कुल छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा बाकी सब करते हैं वैसा मैं भी करता हूँ, लेकिन एक श्रद्धान में अंतर हो जाता है। श्रद्धान में क्या अंतर हुआ कि उन्हें लगता है कि वो घर परिवार चलाने के लिए मेहनत करे तो घर परिवार चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर परिवार तो चलना ही है, जितना चलना है उतना चलेगा, जितना पैसा आना है उतना आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पुण्य पाप के उदय से सब कुछ होगा, जो जाना है वो जाएगा भी, मेरा नुकसान होगा, होना होगा तो वो भी होगा, फायदा होना होगा तो वो भी होगा, लेकिन पहला कार्य ये है। अच्छा, चक्रवर्ती ने कितनी मेहनत की होगी भी उसको इतना सारा राज्य मिला, बताओ। सोचो, तीर्थंकरों ने कितनी मेहनत, सुबह से बचपन से दुकान खोलना, स्टडी पढ़ाई की होगी, बहुत सारी डिग्रियां, दुकान जॉब करी होगी, नौकरी करी होगी, दुकान बिजनेस खोला होगा बहुत बड़ा। हाँ, तीर्थंकरों ने क्या किया था, चक्रवर्ती ने क्या किया था, तो कैसे मिला? पुण्य के उदय। ये श्रद्धा हमें क्यों नहीं आता? ये स्टोरी इसलिए तो पढ़ रहे हैं अपन तीर्थंकरों की, ये श्रद्धा हमें क्यों नहीं आता? हमारे पास जो आना होगा वो आएगा। मैंने एक बात कही थी आपसे, शायद यहाँ पे कही या नहीं कही, आप लोग थे या नहीं, कि मैं जब 10th क्लास में था, एग्जाम खत्म होने के बाद, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि जैन विद्यालय भी चलते हैं देश के अंदर। 10th क्लास के एग्जाम खत्म होने के बाद तो मुझे पता भी नहीं था कि देश के अंदर जैन विद्यालय भी चलते हैं, महाविद्यालय भी चलते हैं, कुछ नहीं जानता था मैं, क्षेत्रों के नाम भी नहीं पता थे, दो चार मुनिराजों के साथ में थोड़ा बहुत घूमा था बस, और प्रक्षार पूजन कर लेता था बस मंदिर में डेली, उतना ही जानता था। इसके अलावा हाँ, क्षेत्रों भी नहीं जानता था, बाकी क्या होते, अष्टद्रव्य तो जानता था, प्रक्षार पूजा तो कर लेता था, विधान भी करा सकता था, लेकिन 6 द्रव्यों के नाम भी नहीं पता थे, 7 तत्व नहीं जानता था क्या होते हैं। अब देखो, आप जो व्यक्ति एग्जाम खत्म, 10th के एग्जाम खत्म हो गए, 11th आने ही वाली है, लेकिन आप देखो पुण्य का होता है कि किसी ने मुझे बताया जयपुर महाविद्यालय, जहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, कौन हूँ, कहाँ से आया, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लौकिक पढ़ाई, धार्मिक पढ़ाई साथ में विद संस्कारों के साथ, मतलब इतना कुछ मुझे बताया उन्होंने, महाविद्यालयों की प्रशंसा, जयपुर गया, प्रशिक्षण शिविर अटेंड किया, रोता रहता था घर की याद में, 18 दिन पूरे रोते रोते निकाले घर की याद में, प्रशिक्षण शिविर में, जयपुर में, मन नहीं लगता था, दिन में 3 बार लैंडलाइन से फोन करता था एसटीडी जाके मम्मी को, और वहां से घर आने के बाद मैंने मना कर दिया था नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी भाव हो गए एट टाइम पे, बार बार कॉल आ रहे थे जयपुर से और कोटा से, कोटा पास में था तो कोटा महाविद्यालय चुना, और वहां भी जाकर के मैं पापा छोड़ के गए और रात से ही कॉल करना शुरू मम्मी को, वापस बुला लो मुझे नहीं रहना है, लेकिन फिर भी रहा। देखो ये कौन सा पुण्य का उदय था पता नहीं, बार बार मुझे भागने का मन करता था, हॉस्टल छोड़ के भाग जाऊं घर बस में बैठ करके बिना किसी को बताए चुपचाप, ऐसा मन करता था मेरा। लेकिन फिर भी देखो पुण्य का उदय, 5 साल रुक गया, और जब रुका तो ऐसा रुका कि हर साल जैन दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा, हर साल जैन दर्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आना। मतलब फिर जब एक बार चिन्मयन की बात सुनने पढ़ने को मिली तो ऐसा लगा कि वास्तव में ये सुनने लायक बात है, ये मेरी बात है। यही जब इन बातों को सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो इसका अनुभव में कितना आनंद आएगा इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब बताओ इसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ी, इतनी उत्कृष्ट बातों को सुनने के लिए जिनवाणी मुझे, इतनी उत्कृष्ट जिनवाणी मुझे बिना किसी मेहनत के मिल गई, समझो। होगा पूर्व पुण्य का उदय, मैं ये नहीं कह रहा बिना मेहनत के, लेकिन पुण्य का उदय, मुझे अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए। तो फिर दो रोटी कमाने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेंगे, दिन रात एक करना पड़ेंगे। आज देखो आपको रात को पूरी रात जाग के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी रात में, मैं तो देखा है सोते ही नहीं है, पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं क्या करते हैं किताबों में ये लोग, क्या करते हैं किताबों के साथ, समझ में नहीं आता। एक हम थे जो एग्जाम के एक दिन पहले किताब पढ़ करके और एग्जाम दे आते थे, अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, और लोग रात रात भर पढ़ करके पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं, समझ में नहीं आता क्या करते हैं। तो ये इतना समय, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आज लोगों की एक शिकायत है धर्म के विषय में, शिकायत क्या है, देखो टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। एक घंटा पूजन करते हैं, एक घंटा पूजन करते हैं, 4 पूजन है पूरी, 3-4 पूजन एक घंटे में सब कर लेते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं, टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पास जितना टाइम है ना, जितना उसका सदुपयोग करो। आपको ना सोचना पड़ेगा कि हम इस टाइम में बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम है तो उतने टाइम में बैठ करके आप सोचो कि 4 पूजन कर लो तो कोई समझ में नहीं आएगा, उतने टाइम में 1 पूजन करो, उसका चिंतन करो, बाकी टाइम स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, उतना ही टाइम लो आप तो, आपके पास जितना टाइम है उतना ही टाइम। अब कुछ लोग डेली सुबह प्रक्षाल तो करके आ जाएंगे, अब प्रक्षाल के लिए लग गई वेदी है के लग गई भीड़ 50 लोग होगी, अब प्रक्षाल करके सब अपने अपने घर, तुम्हारे पास उतना ही टाइम है ना, प्रक्षाल के लिए 5 लोग बहुत हैं, तुम स्वाध्याय कर लो उसी टाइम पे, समझ में आया। मैं प्रक्षाल का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची बात यही है, सच बात यह कि उस समय का सदुपयोग हम कैसे करें। हालांकि ये सट आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने आत्मधर्म की पत्रिका भी सोगानी जी वाली वीडियो दिखाई थी ना, एक सोगानी जी के जन्मदिवस पे वीडियो दिखाई थी एक, उसमें लिखा था सोगानी जी ने पहली बार पढ़ा कि सट आवश्यक शु एक आवश्यक छे, सोगानी जी ने आत्मधर्म पुस्तक पढ़ी, उस आत्मधर्म पुस्तक में वाक्य लिखा था सट आवश्यक शु एक आवश्यक छे, इस एक आवश्यक कार्य को करो ना, इसकी प्राप्ति कैसे होगी यहां से समझ में आएगी। जब जब मुनिराज विकल्प में आते हैं निर्विकल्प अवस्था से, तब एक ही कार्य करते हैं स्वाध्याय, वापस निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए, समझ में आया। तो हमें इस चीज को समझना है, प्रक्षाल करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक वेदी पे, वहां जगह नहीं होती है, और फिर बाद में पानी डाल के मूर्ति पर चले जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, उसके बाद मंदिर नहीं दिखेंगे, तो ये गलत है। उस समय का आपके पास जितना समय है ना, उस समय आप बेटर क्या कर सकते हो, बेटर क्या कर सकते हो वो सोचो। ये माइंड निर्णय करने के लिए है, दूसरों की बातें सुनकर के काम करने के लिए नहीं है, भेड़ चाल नहीं चलना। किसी ने कह दिया भैया ऐसा करने से धर्म होता है तो वैसा करें, किसी ने कह दिया ऐसा करने से धर्म होता है तो वैसा कर लें, इसलिए हमारी मार्ग संबंधी शंका अभी तक दूर नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती, क्योंकि खुद का निर्णय ही नहीं लेना चाहते, विचार ही नहीं करना चाहते किसी बात पे, तर्क नहीं लगाना चाहते, ग्रंथ खोल के प्रमाण नहीं देखना चाहते कि इनने कह दिया तो हमारी बात, इनकी बात मान लो क्योंकि इन पे हमें भरोसा है, ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर देव तो कहते हैं भैया तू अपने आप का भरोसा करना है, एक बार दूसरों का भरोसा क्यों कर रहा है, तूने दूसरों का भरोसा कर करके जिंदगी निकाल दी, एक बार भी एक बार तू अपना भरोसा कर लेता तो तेरी जिंदगी बन जाती, मोक्ष मार्ग मिल जाता। सच तो यही, मार्ग संबंधी शंका अभी तक हमारी दूर नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हमें समझना पड़ेगी, बहुत सारी बातें हैं इसमें। शांति धारा एक बहुत बड़ा प्रकरण है विश्व शांति के लिए। जब लोग लिखते हैं ना अखबार में अपने जैन धर्म में कि यहाँ विश्व शांति के लिए शांति धारा कराई गई, तो मेरे एक समझ में नहीं आता कि तुमने तीर्थंकर के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया और कह दिया विश्व शांति के लिए, लेकिन विश्व शांति तो हुई नहीं, अब क्या करें? ये भगवान का अपमान हुआ या सम्मान हुआ? एक बार गहरा चिंतन करने की जरूरत है। जब अखबारों में अपन हेडलाइन पढ़ते हैं ना, विश्व शांति के लिए शांति धारा की गई, अब किसी ने प्रश्न उठा दिया, क्यों तुम्हारे भगवान को शांति धारा की थी ना विश्व शांति के लिए, तो हुई क्यों नहीं? यार लगता तो है नहीं विश्व में कोई शांति हुई है, घर में शांति नहीं है तुम्हारे, तुम विश्व की बात कर रहे हो, तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम विश्व की बात कर रहे हो। अब इस बात का आंसर कौन दे? कौन आंसर देगा इस बात का? कैसे दे आंसर कि भाई लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लोग धर्म से कैसे जुड़ेंगे? लोग धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, लोग मिथ्या धर्म से जुड़ रहे हैं, मिथ्यात्व से जुड़ते हैं। ऐसे उनको सच बात बताओ ना, वीतरागी भगवान है, इनके जैसा बनने के लिए हमें वीतरागी मार्ग पर चलना पड़ेगा। सच्चा सुख वीतरागता में है, उनको कर्ता मानकर उनकी सेवा भाव में नहीं है। वो हमारा कुछ करेंगे, हमारे घर में शांति करेंगे, ऐसा मानने से मिथ्यात्व है। इससे कर्म बंधेगा, दुखी होगे, इससे सुख मिलने वाला नहीं है। जिस सुख शांति के लिए आपने शांति धारा की थी, उसी शांति धारा से आपको दुख होने वाला है, उसी शांति धारा से दुख होने वाला है। अब बात थोड़ी बड़ी हो गई। क्यों? तुमने कह दिया शांति धारा दुख का कारण है। अरे शांति धारा दुख का कारण नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं तुमने जो शांति धारा की ना विश्व शांति के लिए, कि भगवान इससे विश्व की शांति करेंगे, ये भाव मिथ्या भाव, ये मिथ्यात्व दुख का कारण है, ये मिथ्यात्व दुख का कारण है। समझो, जब भी मेरे को कोई भी लाइन दिखती है ना कहीं भी, किसी भी आचार्य की लिखी हो, किसी विद्वान ने कही हो, तो मैं उसे विचार जरूर करता हूँ एक बार सोच करके कि इसको अपन किस किस तरीके से खोल सकते हैं, किस किस तरीके से खोल सकते हैं। इसलिए प्रथमान योग में भी एक एक लाइन में बहुत मन निकलता है। अब तो जब मैं 11th क्लास में प्रथमान योग पढ़ा था तो एक रात में मैं 3-4 किताबें पूरी कर देता था। स्टोरी ये पढ़ने में आनंद आता था, पूरी कर देता था एक रात में। लेकिन अभी एक एक स्टोरी पढ़ने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक लाइन में बहुत सोचना पड़ता है कि इसमें कितना माल है, कैसे लिखा हुआ आचार्य ने, क्या सोचकर ये बात लिखी होगी। एक बहुत अच्छी बात मैं बच्चों को पढ़ाता था, जब सोनागिर में प्रिंसिपल था तो जब बच्चों के एग्जाम आते थे तो मैं उनको सिखाता था एक बात। तुम जब एग्जाम लिखते हो तो किताबें पढ़कर मत लिखो। जब आप किताब पढ़ते हो ना, ऐसे किताबों को रटो नहीं। जब भी आप किताब पढ़ो तो ये सोच करके पढ़ो ये किताब लिखने वाले ने क्या सोचकर किताब लिखी हो, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करते समय सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ग्रंथों को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसा नहीं। ग्रंथ पढ़ते समय हमें सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ना, उस समय हमें आचार्य के दिमाग को पढ़ना है। पढ़ पाओगे? बहुत आसान है। ग्रंथ पढ़ते समय सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ना, उस समय आपको ये देखना है कि ये शास्त्र लिखते समय आचार्य के मन में क्या चल रहा होगा, उनके कैसे भाव हो रहे होंगे उस समय, कैसी भावना से उन्होंने ये लिखा होगा, तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। एग्जाम लिखते समय भी हमें लौकिक पढ़ाई में भी सेम टू सेम है। जब हम लिखते हैं ना एग्जाम लिखते समय, तो किताब में जो पढ़ा उस समय यही सोचना चाहिए कि लिखने वाले ने किताब में क्या सोचकर लिखा होगा। ये भाव मुझे कक्षा तीन से कि किताबें जो मेरे हाथ में है ये लिखी किसने, क्या सोच के लिखी, उसको किसने पढ़ाया, शुरुआत कहाँ से हुई पढ़ाई की, जब किताबें नहीं थी तो कैसे पढ़ा जाता था। ये तो अब पता चल गया कि भैया पहले तो बुद्धि तेज होती थी, याद रहता था, तो ऐसे ही सबको सिखाया जाता था, मौखिक याद हो जाता था एक बार में, बाद में इसको लिखित रूप दिया गया जब बुद्धि कम होती गई काल प्रभाव से। ये बात तो बाद में समझ में आई, लेकिन ये तो तब तो बहुत पुरानी बात है। लौकिक किताबें तो उसके बहुत बाद बनी है, जब ये लिखित रूप शुरू हुआ था उसके। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कैसे, किस साइंटिस्ट ने कौन, जब सबसे पहले कोई अगर साइंटिस्ट बना होगा तो उसने किस किताब को पढ़ करके खोज की होगी, ये सोचने की बात है। तो हमें जब भी स्वाध्याय करना है तो ये समझना है कि लिखने वाले आचार्य ने किन भावों से लिखा हो, उससे हमें भाव पकड़ में आता है। जब भी पढ़ाई करो तो ऐसे पढ़ाई करो, जब भी स्वाध्याय करो तो ऐसे स्वाध्याय करो, तब भाव पकड़ में आता है। हमें मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो, हमें मार्ग संबंधी शंका छोड़नी है। अभी तो निशंकित अंग की बात चली है, आपको ये 8 अंग पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन लिखी है 8 अंग की। इस 8 अंग को पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा, पढ़ने में आपको सम्यक दर्शन। स्टोरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन स्टोरी के बीच में जो मुनिराज ने उपदेश दिया है वो दवाई है, वो दवाई है। स्टोरी जो है ना वो लड्डू है, स्टोरी लड्डू है लड्डू। और ये जो 8 अंग का वर्णन आया ना, 8 अंग का वर्णन, ये दवाई आई है अभी बीच में। जब हम छोटे थे या पढ़ते थे प्रथमा नियोग तो हम सिर्फ लड्डू खाते थे, दवाई बीच में छोड़ देते थे। उस समय जब समझ में नहीं आता था, घर पे हॉस्टल कोटा जाने से पहले जब हम प्रथमा नियोग ये कहानियां पढ़ते थे जैन धर्म की, तो कहानी कहानी पढ़ते थे और बीच में जो मुनिराज का उपदेश वाली जो एक पेज होता था, आधा पेज होता था, वो छोड़ देते थे। समझ में आना नहीं था क्या पढ़ना, लेकिन जब समझ में आया तो अब ये ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, अब इसमें ज्यादा टाइम लगाते हैं। स्टोरी तो पढ़ जाते हैं लेकिन इसको पढ़ने में अब ज्यादा टाइम लगता है। दवाई है, इसको चबा चबा के लेना है अभी, ठीक है ना। तो तुम इस श्रेष्ठ जिन मार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो। अब तो छोड़ेंगे, अब तो छोड़ सकते हैं ना शंका, अब तो काफी चर्चा हो गई हमारी शंका पे, कितनी सारी बात हो गई है ना, जितनी शंका थी सब खत्म हो गई। मैं तो कह रहा हूँ और कोई शंका हो तो आप तो मेरे पास लेके आना, मैं उसका समाधान कर दूंगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट। आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता हो ना, पंडित जी ऐसी समस्या आ जाए तो क्या करें, ऐसी समस्या आ जाए तो क्या करें, मैं तो उसका भी समाधान आपको दूंगा, क्योंकि इससे बड़ा रास्ता अभी दुनिया में कोई भी नहीं है। बाकी सारी समस्याओं के हल हैं, सब समस्याओं के हल हैं, हमें तो मिथ्या दर्शन का हल ढूंढना है। इसलिए दोनों मुनिराजों ने राजा वज्रजंग और श्रीमती वाले जी से कहा कि हे जी, हे भव्य जी, तुम अभी अभी सम्यक दर्शन ग्रहण करो, इसी भाव में, इसी क्षण, अभी की अभी, हमारे सामने ग्रहण करो। पापा कहते थे ना घर पे, लौकी की सब्जी बनी हो तो बेटा मेरे सामने खा अभी की अभी, वरना तो फेंक देगा, नहीं खाएगा, मेरे सामने खा। आचार्य कह रहे हैं वहां वज्रजंग के जीव से, अभी मेरे सामने सम्यक दर्शन ग्रहण करो, इसके बिना धर्म मार्ग है ही नहीं। हमें तो कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत सरल है। मैं आपको बहुत सरल करके बताऊंगा। देखो नेक्स्ट संडे, अभी तो हमारा टाइम हो गया है, नेक्स्ट संडे में आपको ये 8 अंग, अभी इस पर बहुत चर्चा चलेगी इन 8 अंगों पे अपनी, तो नेक्स्ट संडे अपन और इसको पढ़ेंगे और धर्म के मार्ग को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी की बात को ये विराम देते हैं।